ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد برادران الإسلام ما شاء الله حضرات علماء الكرام جہاں پر ہوتے ہیں اور ان کے پروگرام بھی ہوتے رہیں گے ان سے آپ حضرات استفادہ بھی کرتے رہتے ہیں تو اس لیے اس اعتبار سے تو کچھ آپ حضرات سے گزارش کرنا مشکل ہے کیونکہ ہم سے زیادہ علم والے عمل والے لوگ ہوتے ہیں لیکن چونکہ آپ حضرات کی محبت و تعلق میں آ گئے یہاں مل رہے دیکھنے اور ہمارے مولانا کی خواہش ہوئی کہ تھوڑی دیر بات کی جائے موقع کی نزاکت سے بہت تھوڑی دیر بات کرنے کا ارادہ ہے ورکنگ ڈیز ہیں رمضان کا مہینہ ہے تراویح میں پڑھ کے آدمی تھک بھی جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجاہدہ ڈال دیا رمضان میں رمضان مجاہدے کا ہی مہینہ ہے روزہ مجاہدہ ہے تراویح مجاہدہ ہے صوفیہ کے پاس آپ نے سنا ہوگا کہ مجاہدہ ہوتا ہے کھانے کا سونے کا بات کرنے کا ملنے کا رمضان میں یہ سارے مجاہدے اللہ نے جمع فرمائے ہیں کھانے کا مجاہدہ روزے میں ہوتا اور ایسا اس کی اسٹریٹجی اللہ نے بنائی ہے کہ آپ کتنا بھی کھائیں مجاہدہ ہوتا ہے ڈیوریشن ایسا بنایا ہوا ہے اس کا مجاہدہ ہوتا ہے برابر تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ آدمی افطار میں زیادہ کھائے سحر میں زیادہ کھائے مجاہدہ کر بھی ہوگا اس کا کم کھانے زیادہ کھانے کے دو فلسفے علماء اسلام میں پائے جاتے ہیں روزے کے بارے میں امام غزالی اور ان کے لوگوں کا رجحان یہ ہوتا تھا کہ روزے میں کھانا کم کھانا چاہیے تاکہ جو مقصد ہے مجاہدے کا پیٹ کو کھانے کی خواہش کو توڑنے کے توڑنا شہوت کو توڑنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہوت وطن اور شہوت فرج کو توڑنے کے لیے رکھا ہے تاکہ وہ ٹوٹے گا نفس جو ہے نا مجمعل ہوگا نفس مجمعل ہوگا تو شرارت نہیں کرے گا شرارت نہیں کرے گا تو دین پر چلنا آسان ہوگا یہ لاجک ہے تو اس لیے کم کھانا چاہیے افطار میں بھی اور سحری میں بھی یہ امام غزالی وغیرہ کی تحقیق ہے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کی تحقیق یہ ہے کہ نہیں ویسی کوئی بات نہیں اچھا ہے آپ کم کھائیں تو لیکن اگر کوئی نہ کھائے پیٹ بھر کھائے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا مجاہدے مجاہدہ تو کوئی بھی ہے اس لیے کہ حکیموں کی قول کے بقول جو ہے بقول چار گھنٹے میں ہضم رابع ہو جاتا ہے یعنی پیٹ میں جو کچھ آپ نے ڈالا ہوا ہوتا ہے وہ چار گھنٹے میں فنش ہو جاتا ہے اس کے بعد تو پھر آپ کو مجاہدے چاہے 9 گھنٹے کا روزہ ہو چاہے 17 گھنٹے کا روزہ ہو اپنے کو دونوں ملتے ہیں نا 9-10 والے بھی ملتے ہیں ایک دم 17-18 گھنٹے والے بھی روزے ملتے ہیں پھر سونے کا جو مجاہدہ ہے وہ تراویح کے ذریعے سے اللہ کراتے ہیں تو نہیں ملنے کا مجاہدہ لوگوں سے کم ملنا جو ہے نا بہت سی آفتوں مصیبتوں سے بچاتا ہے اور دین پر چلنے میں بہت مددگار ہوتا ہے اس کے لیے اللہ نے اعتکاف رکھ دیا اعتکاف کے ذریعے سے مجاہدہ کروا دیا اور کم بولنے کا جو مجاہدہ ہے اس کے لیے اللہ نے قرآن پاک کی تلاوت رکھی تلاوت کرو سنو رمضان قرآن کا مہینہ جتنا زیادہ تم تلاوت کرو گے اتنا اچھا یہ مجاہدے کا تو ہے وقت لیکن پھر بھی زیادہ برڈن تو نہیں ڈالنا چاہیے آدمی کو جیسے بہادر ہو اس لیے ذہن میں یہی بات آئی کہ اس موقع پر اگر کچھ گزارشات آپ سے کی جائیں تو وہ تھوڑی کی جائیں مختصر کی جائیں ضمن میں یہ عرض ہے میرے بزرگوں کہ یہ جو سعادت اللہ پاک ہمیں مرحمت فرما رہے ہیں کہ اپنے سامنے کھڑا کرتے ہیں اور اپنے سامنے اپنا کلام سنواتے ہیں یہ شفقت کی بات ہے کلام اتارا اور اس امت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص معاملہ ہے چونکہ آپ کے محبوب کی امت ہے اور ہم اللہ کے بندے ہیں تو بندے ہونے کی وجہ سے بھی ان کو محبت ہے الخلق عیال اللہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہوتا ہے اور پھر خاص طور پر حضور کی نسبت لگی ہوئی ہے اس کے خاص بینیفٹس ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفقت کے طور پر یہ چیز رکھی ہے کہ مجھے میرا کلام جو میں نے تمہارے لیے اتارا ہے ہدایت کے لیے میرے سامنے پڑھو میرے سامنے پڑھ کے ایک آدمی پڑھے گا بغیر سب سنیں گے اپنے سامنے ہر سال سنواتے ہیں اس لیے اس قرآن پاک کے ساتھ میں بہت شغف ہونا چاہیے محبت کے اعتبار سے عظمت کے اعتبار سے जितनी मोहब्बत इसके साथ होगी, इतनी आजमत इसके साथ होगी, उतनी इसकी इसको फॉलो करना आसान होगा, इसकी बात को लेना आसान होगा। और आजमत जो है वो अल्लाह का कलाम है, कलामुल मुलुकी मुलुकुल कलाम, बादशाहों का जो कलाम होता है वो बातों का बादशाह होता है। जो बादशाह का कलाम होगा वो बातों का बादशाह होगा। तो ये अल्लाह का कलाम है तो सारे कलामों से अफजल है। तो और फिर ये कि खालिक हैं, मालिक हैं, रब हैं, हाकिम हैं हम सब के, पूरी कायनात के, पूरे यूनिवर्सल के, पूरी मखलूकात के अकेले खालिक हैं, कोई उनमें शरीक नहीं। मालिक हैं, ओनर है वो, पूरी मखलूकात के ओनर है। कुरान पाक में इतनी जगह आपने सुना होगा वलिल्लाहि मुल्कुस समावात, वलिल्लाहि मुल्कुस समावात, लहू मा फिस समावात, लहू मा फिस समावात, 50 जगहों पर आपने सुना होगा कुरान पाक में, सुनेंगे और अल्लाह मालिक है उन सब चीज़ों का जो आसमान में, अल्लाह मालिक है उन सब चीज़ों का जो ज़मीन में, अल्लाह मालिक है उन सब चीज़ों का जो इन दोनों के दरमियान है। लहू मा फिस समावात वमा फिल अर्द वमा बैनहुमा वमा तहत अस्सरा, तो इन दोनों के दरमियान है, हम आ गए, हमारी बीवी बच्चे आ गए, हमारे हमारी प्रॉपर्टीज आ गई, हमारे मकानात आ गए, हमारी दुकानात आ गए, हमारा माल आ गया, हमारी जान आ गई, हमारे हाथ पैर आ गए, हमारे आँख नाक आ गए, कान आ गया, दिल दिमाग आ गया, हमारी किडनी लीवर आ गए, कोई चीज़ बची नहीं। लहू मा फिस समावात वमा फिल अर्द, वो मालिक है, सबका खालिक है और सबका मालिक है और सबका हाकिम, उनका हुक्म चलता है, उनके हुक्म से लोग पैदा होते हैं, उन्हीं के हुक्म से मरते हैं, उन्हीं के हुक्म से इज्जत पाते हैं, उन्हीं के हुक्म से बीमार होते हैं, उन्हीं के हुक्म से शिफा पाते हैं, उन्हीं के हुक्म से फ़कीर होते हैं, राहत पाते हैं, उन्हीं के हुक्म से खुश होते हैं, उन्हीं के हुक्म से सारी मखलूक होती है, वही हाकिम है, किसी और का हुक्म नहीं चलता इस मामले में। और वही रब है पालने वाले में हर छोटी बड़ी ज़रूरत और हर छोटी बड़ी मखलूक की ज़रूरत, मखलूक चाहे छोटी हो चाहे जिब्रील हो, सबके रब वही, हम सबके रब भी वही, हमारे आबा व अजदाद के भी रब वही, हमारी औलाद के भी रब वही है, हम नहीं है रब, ना हम खालिक हैं अपनी औलाद के। अल्लाह ने फरमाया एक जगह कुरान पाक में पूछा है, तुम खालिक हो या हम खालिक हैं, किस चक्कर में हो, ये गलत फहमी में रहेंगे आप। कुरान पाक में साफ है ये बात, अंतुम तखलुकुन अफरायतुम मा तुमनून अंतुम तखलुकुन हुवा नहनुल खालिकुन, तुम खालिक हो या हम खालिक हैं, तुम्हारी औलाद के हम खालिक हैं, हम सूरत बनाते हैं, हम पैदा करते हैं, हमारे भी वही खालिक है, सबके भी वही खालिक, और फिर मालिक भी वही है, फिर हुक्म भी उनका ही चलता है, फिर रब भी वही है, पूरी कायनात के रब। अब आप अंदाज़ा फरमाइए कि उन्होंने हमारी हिदायत के लिए इस कलाम पाक को नाज़िल फरमाया है, इसमें कितनी शान है, कितनी अजमत है, और वो इतनी बड़ी ज़ात है कि उनके कलाम को इस सुनने की सलाहियत दी और बर्दाश्त करने की सलाहियत पैदा की हमारे अंदर, वरना हम नहीं उठा सकते थे इसका बोझ, इतना इतना बोझ है इसमें। وَنَزَّلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, अगर हम इसको पहाड़ पे उतार देते पहाड़ टूट जाता, वो पारा पारा हो जाता, वो नहीं संभाल सकता था। तो हमने तुम्हारे अंदर इस्तेदाद रखी है हमारे कलाम के वज़न को लेने की, इसमें एक वज़न होता है, जितनी कसाफत दूर होती है उतना वज़न महसूस होता है, उसकी अजमत महसूस होती है, जितनी कसाफत रद्दीपना तबीयत में आ जाता है, गुनाहों की गफलत और जुल्मत आती है, उतना ज़्यादा महसूस नहीं होता। हज़रत शाह फजल रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक अहले हदीस आए और उन्होंने कहा कि मैं आपसे हदीस की सनद लेना चाहता हूँ बुखारी शरीफ। वो लोग हदीस से तुमको ज़्यादा मोहब्बत जाहिर करते हैं। तो हज़रत ने फरमाया अच्छा भाई सनद लेने का, पहले तो माजरत की उसके बाद तुम माने नहीं, तो हज़रत ने फरमाया अच्छा ठीक है बुखारी शरीफ लाओ। तो इजाज़त देने का तरीका यह होता है कि पढ़े पहले पढ़ाते हैं, भाई कहीं से पढ़ो फिर मैं दूंगा इजाज़त तुम्हारे। अब उन्होंने वो उनको हमादानी का गुरूर था कि मैं जानता हूँ, मैं तो इनसे बुखारी की सनद भी ले सकता हूँ, वो सब हदीस की सनद भी ले सकता हूँ, मैं बहुत काबिल हूँ, बहुत पढ़ा लेता हूँ। हजरत ने फरमाया अच्छा पढ़ो। अब देख रहे हैं एक ना दो पढ़ ही नहीं सके, कहने लगे भाई जब तुमसे नहीं पढ़ा जा रहा है तो फिर इजाज़त फिर किसी और को देखेंगे, जब पढ़ने आएगा जब इजाज़त लेना। ये फरमाए वो चले गए तो उनके जो मुरीदीन बैठे हुए थे उन्होंने कहा हजरत ये क्या हुआ, वो तो अरबी दा है, वो हदीस की इजाजत देने के लिए आया था, आपने उससे कहा हदीस पढ़ो, तो उसे पढ़ी नहीं। कहने के उसको थोड़ा जाम हो गया था कि मेरे को बहुत कुछ आता है, तो मैंने हदीस शरीफ की अजमत का वजन उस पर डाल दिया, नबी के कलाम का वजन मैंने उस पर डाल दिया, फिर नहीं निकला उसके मुंह से, ये पढ़ने को आ गया मेरे सामने। पहले जानो अदब तय करते, खिदमत करते, सीखते उलमा के पास बैठ के, फिर इजाजत लेते थे। एक बात थी तो मुझे उसको बताना ये था कि ये ऐसा नहीं लिया जाता नबी का कलाम, उसका तो तरीका है, उसके आदाब। अब अंदाजा कीजिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम में इतना वजन है, उसकी इतनी अजमत है, अल्लाह के कलाम की अजमत का क्या हाल होगा। बहुत अजमत से पढ़ना होता है, बहुत अजमत से सुनना होता है, और जितनी अजमत उतनी मोहब्बत, और जितनी मोहब्बत उतनी इताअत। मकसूद असली तो ये है कि कुरान पाक पर अमल होना है। कुरान पाक क्या है मेरे दोस्तों? मौलाना रूम रहमतुल्लाह ने फरमाया कि चीज तो कुरान है, कलाम हक शनास, कलाम हक को जानने वाले। कुरान क्या चीज है तुझे पता है? कुरान क्या है? चीज तो कुरान है, कलाम हक शनास, रूनुमाए रब्बे नास बाजाने नास, ये तेरे रब की रूनुमाई है, लोगों के रब की रूनुमाई समझते हैं, चेहरा दिखाना, जैसे दुल्हन की रूनुमाई होती है, दुल्हन को घर लाते हैं, दूल्हे वाले उसको बिठा के उसके घूंघट उतार के सबको उसकी सूरत दिखाते हैं, उसको रूनुमाई कहते हैं, उस मौके पर हदिये उदिये चलते हैं, ये है वो है, सब रूनुमाई कहते हैं उसको। तो वो कह रहे हैं मानो रूनुमाए रब्बे नास, लोगों के रब की रोनुमाई है, बा जानी ना लोगों की जान के लिए, लोगों की जान के लिए लोगों के रब की रोनुमाई, लोगों की जान पर। अब ताला शान वो अपना तारुफ कराते हैं, अपनी सिफत बयान करते हैं, अपनी कुदरत, अपना इल्म, अपनी हिकमत, अपनी रुबूबियत, अपनी शान, अपनी हिफाजत, अपनी रजाकियत। कुरान पाक पूरा इससे भरा हुआ, मैं जब पालता हूँ तो कैसे पालता हूँ, मैं जब पकड़ता हूँ तो कैसे पकड़ता हूँ, मैं जब कामयाब करता हूँ तो कैसे कामयाब करता हूँ, मैं जब नाकाम करता हूँ तो कैसे नाकाम करता हूँ, मैं जब सजा देता हूँ तो कैसे सजा देता हूँ, मेरी हिफाजत कैसी है, मेरा इल्म कैसा है, मेरी हिकमत कैसी है, मेरे इनामात कैसे हैं, उनकी क्या तफसीलात है, मेरी नाराज़गी कैसी है और मेरी सज़ा कैसी है और उनकी क्या तफसीलात हैं। सर यही है पूरा कुरान पाक इसी से भरा हुआ है। रुनुमाए रब्बे नास, उनकी मर्ज़ी और नामर्ज़ी, उनके इनामात और उनकी सज़ा, और उनकी हिमायत और उनकी मुखालफत का अंजाम, और हिमायत पर जब आते हैं तो हिमायत कैसी करते हैं, और इंतकाम पर जब आते हैं तो इंतकाम कैसा लेते हैं, वो किस चीज़ से इंतकाम ले सकते हैं, वो कैसा इंतकाम ले सकते हैं। पूरा कुरान यही तो खोलता है। क्या खोलता है? पानी से सजा देते हैं, हवा से सजा देते हैं, पत्थरों से सजा देते हैं, ज़मीन से सजा देते हैं, दिन में पकड़ लें, रात में पकड़ लें, पानी के पास लोगों को पहुंचा दें, पानी को लोगों के पास पहुंचा दें, पानी में किसी को तिरा दें, किसी को डुबा दें। शान है, ऐसी कुदरत वाले अल्लाह है। तो पूरे कुरान पाक के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला का बंदों को तआरुफ़ कराया जाता है, ताकि अल्लाह की अजमत बैठ जाए दिल में, और अपना फ़क्र और अपनी एहतियाज और अपनी कमज़ोरी, अपनी अब्दियत वो खुल जाए। मैं टोटली मोहताज हूँ, 100% मोहताज हूँ, हर वक्त मोहताज हूँ, हर आन मोहताज हूँ, हर सेकंड में मोहताज हूँ, और हर सेकंड में हज़ारों लाखों लाइनों से मोहताज हूँ। ला युस्तग़ना अनिल्लाहि तरफ़त आइन, अल्लाह तबारक व तआला से इस्तग़ना पलक झपकने के बराबर भी नहीं। अब नहीं है ज़रूरत, अभी तो माशाल्लाह जॉब मिल गई, पैसे भी आ रहे हैं, घर भी बन गया, पेट भी हो गया, गाड़ी भी मिल गई, शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, अब मेरे को क्या है, खाने पीने का मसला भी हो गया, वजीफा हो गया, मेरे को अब ज़रूरत नहीं। ऐसा कोई है मसला कभी किसी हाल में? कभी इस्तग़ना वमन ज़न्ना अन्नहु मुस्तग़निन अनिल्लाहि तरफ़त आइन फ़क़द ख़रज़ अन मिल्लतिल इस्लाम, जो ये गुमान करता है कि एक सेकंड के लिए भी अल्लाह की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह का वो मोहताज नहीं है, वो इस्लाम से ही निकल जाता है। ये अकीदे की किताब है, अकीदे की किताब की इबारत सुना रहा हूँ आपको, अकीदे तहावी की इबारत है। क्योंकि एक लाइन से भी नहीं, हजारों लाइनों से, क्योंकि हमारा वजूद ही उनसे, हम कैसे मुस्तकनी हो सकते हैं? वो अगर मुतवज्जे हैं तो हम कायम हैं, उनकी तवज्जो हट जाए तो हम सब फिनिश हो जाएंगे, पूरी कायनात फिनिश हो जाएगी। रहेंगे ही नहीं हम, क्योंकि वजूद हमारे पास है नहीं, अमानत है उनकी जिंदगी, हमारे पास है नहीं, अमानत है उनकी, हमारी जिंदगी उनकी अमानत है। तभी तो जिंदगी का हिसाब है, अगर उनकी नहीं रहती तो हमारी रहती तो हमारा हिसाब फेंक लेते। आंखें उनकी हैं, कान उनके हैं, दिल उनका है, दिल की सोच उनकी है। कानों का भी हिसाब लूंगा, आंख का भी हिसाब लूंगा, दिल का भी हिसाब लूंगा। उनका है वो, हमारे पास अमानत है, उसके हिसाब लेते। आप किसी के पास रखा दें कोई चीज, आप हिसाब लेते हैं उसका, हमारे पास कोई। तो अब कहाँ से हमारे को इस्तकना मिलेगा? हमारे खून के दौड़ने में हम उनके मोहताज हैं, हमारी किडनी काम करने में हम उनके मोहताज हैं, लीवर काम करने में उनके मोहताज हैं, दिल धड़कने में उनके मोहताज हैं, दिमाग काम करने में उनके मोहताज हैं, ब्लड सर्कुलेशन में उनके मोहताज हैं, सब चीज़ों में मोहताज ही पड़े हुए हैं। फ़कीर ही फ़कीर है, और हम क्या, पूरी कायनात फ़कीर है, और आसमानों की पूरी मखलूक फ़कीर है। कुरान पाक में खुला ऐलान की शान है अल्लाह की, बड़ाई उनको जेब जेब देती है, इसलिए वो धड़ल्ले से ऐलान करते हैं, ये सल वो मन फिर समावाती वाला मांगते हैं, वो जो आसमानों में मेरे से, सब जो ज़मीन में सब मांगते हैं। जिब्राइल भिखारी है, मिस्रा इसराफील भिखारी है, इज़राइल भिखारी, मिकाइल भिखारी, सब भिखारी, उनको ये जेब देता है। और हकीकत है, और ज़मीन के जो है बादशाह भी फ़कीर, फ़कीर तो फ़कीर है, अमीर भी फ़कीर, गरीब भी फ़कीर, बिजनेस मैन भी फ़कीर, आलिम भी फ़कीर, जाहिल भी फ़कीर, वली भी फ़कीर, नबी भी फ़कीर, उनके मामले में इस्तेमाल किसी को नहीं हो, सब अल्लाह के मन, उन्हीं अल्लाह के पैदा होने की, पैदा करने की वजह से पैदा है, नहीं तो रह नहीं सकते। ऐसी ज़ात है मेरे दोस्त, इसलिए क्या है, अख्तियारे शान हो अपनी अजमत और अपनी अपनी किबरियाई और अपना फेल वो बिठाना चाहते हैं दिलों में, ताकि तौहीद का कमाल मिल जाए, क्योंकि ईमान का कमाल तौहीद के कमाल के साथ है। अख्तियारे शान ने कुरान पाक की तिलावत का निज़ाम ही ऐसा बनाया हुआ है, और पूरा कुरान पाक इसी से बना हुआ है। ये हम सुनते हैं रमज़ान में, ये पढ़ते हैं रमज़ान में, तो रमज़ान का मुबारक महीना जो है वो अपने अपने ईमान को ताज़ा करने का महीना है, रिन्यू करने का महीना है, यकीन बनाने का महीना है। और वैसे अगर नहीं बन रहा है तो बाद तो अल्लाह के रास्ते में सफ़र करके बनाना चाहिए, मगर बनाना चाहिए, ये महीना ही हुआ है। जितनी ज़्यादा आज़मत दिल में होगी उतनी ज़्यादा बात मानना है। यह रोशनी है हमारे लिए, ज़िंदगी गुजारने का रास्ता अल्लाह ने इसको बनाया। ज़िंदगी गुजारने के रास्ते में दो चीज़ें बुनियादी हैं, एक ये है कि आपको बाहर की रोशनी चाहिए चलने के लिए, चाहे लाइट की रोशनी हो, चाहे सूरज की रोशनी हो, कोई ना कोई रोशनी हो, बाहर की रोशनी चाहिए होगी। कुरान की रोशनी और हदीस की रोशनी वही है जो बाहर आदमी को दी गई है, चलना कैसा, क्योंकि ये चलना दीन जो है ना, ये चलना है, इसीलिए खुद सूरह फातिहा में हम कहते हैं हिदिनस सिराते मुस्तकीम, सीधे रास्ते पर चलाइए हमें। फिकर चलना होता है, अकीदा चलना है, अमल अमल है, बंदे के अमल को चलना कहते हैं इस्लाम में, बंदे के अमल चल, बंदे का अमल चलता है, यही सुलूक है, यही चलना है, बंदे का अमल चलना है, आदमी का अकीदा ईमान चलना है, देखना चलना है, सुनना चलना है, बोलना चलना है, पकड़ना चलना है, ये सब चलना है सिरातुल मुस्तकीम। इसी वजह से हर हर अमल के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के मुताबिक, मर्जी के मुताबिक उस अमल का अंजाम पाना चलना होता है। तो बाहर की रोशनी है ये जो दी गई है कुरान के ज़रिए से, हदीस के ज़रिए से, एक रोशनी अंदर चाहिए होती, एक रोशनी अंदर होना है। अगर आदमी बाहर रोशनी है लेकिन अंधा है, खुद सूरज निकला हुआ है, आदमी अंधा है, ऐसे चल सकते, नहीं चल सकते। और एक आदमी अच्छा खासा है, उसकी आंखें साफ है लेकिन अंधेरे में फिर भी नहीं चल सकता, तो बगैर वही के इल्म, बगैर वही की रोशनी के बाहर अंधेरा ही अंधेरा है, क्योंकि मालूम ही नहीं बगैर बगैर वही के इंसान को चलना कैसा है, इंसान का अमल कैसे होता है, बिल्कुल खराब, प्योर अंधेरा है, वही के बगैर प्योर अंधेरा है। वही के जरिए से ये रोशनी दी गई, अंदर जो है वो हिदायत की रोशनी होती है, ईमान की रोशनी होती है, वो इस्तेदाद की रोशनी होती है, आज प्रॉब्लम वो है, बाहर की रोशनी फुल है, अंदर रोशनी नहीं। वही नहा लाता हूँ वाला सार वाला दिन तामल कुलू बोल रही फिर सुदूर। आंखें अंधे नहीं होती, दिल अंधे हो जाते, दिलों में कसावट आ गई, दिलों में सख्ती पैदा होगी, दिलों में फहम बिगड़ गया, फहम बिगड़ गया, समझ बिगड़ गई। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ने लिखा है कि सुन्नत को छोड़ने की अगर आदत हो गई, चाहे एक सुन्नत के भी छोड़ने की आदत हो गई, सुन्नत के छोड़ने की अगर आदत हो गई तो दिल टेढ़ा हो जाता है।
नहीं सही है।
दिल टेढ़ा हो जाता है। जब दिल टेढ़ा होता है तो उस दिल में कुरान पाक टेढ़ा आता है और हदीस शरीफ भी टेढ़ी आती है। पढ़ रहे हैं बुखारी शरीफ, पढ़ रहे हैं हदीस शरीफ, पढ़ रहे हैं कुरान शरीफ, अंदर मतलब गड़बड़ आता है। क्योंकि जब आईने में जो चीज आती है ना, अगर आईने की पॉलिश सही है, उसमें पारा सही लगा हुआ है, तो आपकी सही सूरत आती है उसमें। और अगर पारा टेढ़ा बिंगा हो गया तो आप सीधे खड़े में उसमें सीधे नहीं दिखते। तो नुमाइश हम तकरीबन सारे हैदराबाद के दिख रहे हैं। नुमाइश मैदान में जो है वो एक हंसी घर है, जनवरी से लेके फरवरी की 10 तारीख तक नुमाइश लगती है ना वहाँ पर, वहाँ पर एक हंसी घर है, 10 रुपये उसके टिकट है। तो उसमें जो है जो जाता आदमी पेट दर्द हो जाता उसका हंसते हंसते। उसमें क्या है मालूम, एक गैलरी बनी हुई है, उसमें आईने बने हुए हैं, एक आईना, दो आईने, तीन आईने, लाइन से दीवार पे जो है ना आईने टके हुए। और वो आईनों की सिफत ये है कि जैसे ही बंदा उसके सामने जाके खड़ा होता है तो कोई आईना ऐसा है कि आदमी बिल्कुल ऐसा पेपा रंग ड्रम की जैसा लगता है। आदमी अब सारे उसको देख रहे हैं, अरे तू तो कितना बड़ा ड्रम हो गया। जो दोस्त होते हैं ना साथ में वो सब हंसी उड़ाते हैं, खुद भी हंसता है वो लोगों को। और कोई ऐसा है कि उसके सामने आप जाके खड़े होते हैं तो एकदम आदमी को टेढ़ा दिखा देता है, ऐसा टेढ़ा कर देता है। कोई ऐसा है कि उसको छोटा दिखा देता है आदमी को। आदमी तो सेम है लेकिन आईने की खूबी खसूसियत के अतबार से आदमी उसमें मुनक्किद होता है। जब दिल वो टेढ़ा आईना बन जाता है, जब दिल में टेढ़ापन आता है तो फिर कुरान और हदीस का फहम नहीं रहता, गलत आता है। और जब गलत आता है तो जो चीज सही है वो गलत और जो चीज गलत है वो सही दिमाग में बैठती है, फिर इल्म की गुमराही शुरू होती है। फिर जो मारूफ है वो मुनकर और जो मुनकर है वो मारूफ दिखने लगता है। और क़यामत के करीब ये बीमारी उम्मत में आ जाएगी। हुजूर ने फरमाया है इज़ा रुअ अल-मुनकर मारूफ वल मारूफ मुनकर, जब मारूफ मुनकर दिखने लगेगा और मुनकर मारूफ दिखने लगेगा उम्मत को। जिंदगी के जितने शोबे हैं उन सब शोबों में आप देखो मुसलमान को इस वक्त उल्टा दिख रहा है, उल्टा चश्मा लगाया हुआ है, सब गलत देख रहा है। जो मारूफात हैं वो मुनकरात लगते हैं। शादी का मारूफ तरीका क्या है वो मुनकर लगता है, जो मुनकर तरीका है वो मारूफ लगता है। लिबास का जो मुनकर तरीका है वो मारूफ लगता है, अब जो मारूफ तरीका है वो मुनकर लगता है, वो एक बैकवर्ड है, बेवकूफ है, पहनने नहीं आता। शक्ल सूरत का जो मारूफ तरीका है वो मुनकर लगता है, जो मुनकर तरीका है वो मारूफ लगता है। अरे यार शक्ल तो बना लेते हैं हमें दावत में, यानी जो अच्छी खासी शक्ल है जिस अल्लाह के रसूल के मुआफ़िक उसको दुश्मन के मुआफ़िक बना के आएंगे, इतना मामला बिगड़ा। जो तालीम है जो मारूफ तरीका है वो मुनकर लगता है, हाफिज बना दो, वालिम बना, अरे ये क्या है बच्चों का सत्यानाश कर रहे हैं, अपनी औलाद का जो है ना भला नहीं कर रहे हैं। जो मुनकर तरीका है उनको यहूद नसारा की गोद में डालने का वो भला मारूफ लगता है, उसके लिए पैसे खर्चा हो रहे हैं, पिक एंड ड्रॉप की मुसीबत भी झेली जा रही है, हर किस्म के यूनिफॉर्म का चक्कर, ये चक्कर वो चक्कर, हर किस्म की मुनकर बाद में उसके, ये तो मुनकर नहीं है, पिक एंड ड्रॉप मुनकर नहीं है, कुरान अलग चीज़ है, उसमें मुनकर बेहिसाब है, ये बोल रहा हूँ। उसमें है ही नहीं दी के जी से लेके यूनिवर्सिटी तक कोई एक चैप्टर है क्या बताओ अल्लाह रसूल के बारे में, है ही नहीं दी। मगर हमारे पास वो एजुकेशन है, जहालत के पढ़ने का नाम इल्म रख ले हम लोग, जहालत भी पढ़ी जाती है, जहालत भी पढ़ी जाती है, उसका नाम इल्म रख दिया। मुनकर जो है ना उसमें मारूफ बन गया, जो मारूफ है वो मुनकर, कोई एक चीज आपको नहीं मिलेगी ऐसी, मामलात हों, माशरत हों, अखलाक हों, लिबास हो, तहजीब हो, ثقافت ہو، کلچر ہو، خوشیاں ہوں، غم ہو، گیدرنگ ہو، کچھ بھی سب پورا یہاں سے مطلب اور الٹ گیا سارا مسئلہ. تب قرآن حدیث کیسے سامنے اترے گا؟ سیدھا سیدھا اللہ کی بات نہیں اتر سکتی. تو اس لیے دوسری جو چیز ہے وہ ہے اندر کی استعداد، وہ صحیح ہونا، اور اللہ کا یقین دل میں صحیح بڑھنا، اور کلمے کا صحیح مفہوم دل کے اندر اترنا، کلمے کی حقیقت دل میں حاصل ہونا، وہ محنت کا میدان ہے. اور وہ لینے کے وہ لینے بندہ لے تو پھر یہ لے سکتا ہے صحیح. اس کو قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا ہے ان فی ذلک لذکرہ لمن کان لہ قلب. اس کلام پاک میں نصیحت اس بندے کو ملے گی جس کے پاس میں دل ہوگا. ان کے پاس کوئی خاص دل مراد ہے، ایسا تھوڑی ہے کہ سب یہ میرا آپ کا سب کا دل ہے. ان فی ذلک لذکرہ لمن کان لہ قلب، جس کے پاس میں دل ہے وہ لے گا اس سے. او القى السمع وهو شهيد، اور اگر وہ دل نہیں ہے اس کے پاس تو دل والے کو لے جا کے اپنا کان لگا دے، او القى السمع، یا اپنا کان دے دے اور وہ بھی حاضر ہو کر، وهو شهيد، پوری طرح متوجہ ہو، پوری طرح حاضر ہو، اس کی صحبت میں چلا جائے. شہیدوں سے صحبت بھی نکل رہی ہے، یہ نہیں اسے سن لیا، اسے سن لیا، آڈیو سے سن لیا، پرسن کے پاس میں جا کے جانے سے تبدیلی آتی ہے، تغیر جاتا ہے، وہ اثر کو قبول کرنا جو ہے نا وہ شخصیت چاہتا ہے. اور پسم آؤ ہوا شہید، تو یہ ایک محنت ہم کر رہے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی، سننے کی، پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس کے ساتھ اندر کی استعداد کی محنت ہے. اس پر بھی محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری استعداد صحیح ہو جائے، ہمارا ذوق بن جائے، ہمارا ایمان بن جائے، یقین بن جائے، نور ایمان حاصل ہو جائے. اگر وہ چیز حاصل ہو گئی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلام پاک کے ذریعے سے ہدایت دیں گے اور اسے رفع کریں گے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے بہت سوں کو رفعت عطا فرماتے ہیں، بہت سوں کو ذلت عطا فرماتے ہیں، بہت سوں کو ہدایت دیتے ہیں، بہت سوں کو ذلیل کرتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں. یضل بہ کثیرا، بہ اے بالقرآن، یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا. اللہ پاک گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے سے بہت سوں کو، ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے سے بہت سوں کو. ما یضل بہ الا الفاسقین، اور نہیں گمراہ کرتا مگر فاسقوں کو. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھا 11 بجے تک کا نکالے گا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الا بفضلك ما لبلغك ومعافاك وانفتح صدرك للفرحان. يا الله ہماری مغفرت کر دیجیے، ہمارے والدین کی مغفرت کر دیجیے، ہمارے اعزاء و اقارب کی مغفرت کر دیجیے. اے اللہ قول امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے، جو حیات ہے ان کی بھی، جو وفات پا گئے ان کی بھی. اللہ پوری امت پر رحم فرما دے، امت مسلمہ سے رنج و غم کو دور فرما دے. یا اللہ پوری دنیا میں امت مسلمہ کے حالات کو صحیح فرما دے. اللہ پوری امت پر سے ہونے والے مظالم کے سلسلے کو ختم فرما دے. اللہ ان کے اوپر سے خوف کے وعدے کو چھاڑ دیجیے. اللہ مسلمانوں کے خوف کو امن سے بدل دیجیے، ان کی بے عزتی کو عزت سے بدل دیجیے. اللہ ان کی پریشانی کو اطمینان سے بدل دیجیے، ان کی مغلوبیت کو غلبے سے بدل دیجیے. یا اللہ کرم کا، رحم کا، عافیت کا، یسر کا، سہولت کا، آسانی کا معاملہ فرما دیجیے. رمضان کے انوارات و برکات سے پوری امت کو منور فرما دیجیے. اے اللہ رات اور دن دونوں کو منور فرما دیجیے، مردوں اور عورتوں دونوں کو منور فرما دیجیے. اپنے فضل سے ہمیں ہدایت عطا فرما دیجیے. اللہ ہمارے قلوب کو، اللہ ہمارے قلوب میں حیات نصیب فرما دیجیے. اللہ ہمارے قلوب سے نفاق کو ختم فرما دیجیے، نفاق سے ہمارے سینوں کو پاک صاف فرما دیجیے، ریاکاری سے ہمارے اعمال کو پاک صاف فرما دیجیے، جھوٹ سے ہماری زبانوں کو پاک صاف فرما دیجیے، اور خیانت سے ہماری آنکھوں کو پاک صاف فرما دیجیے. اے اللہ پاکیزہ زندگی نصیب فرمائیے، عافیت والی زندگی نصیب فرمائیے. ہم سب کو صحت اور عافیت عطا فرمائیے، ہماری اولادوں کو صحت اور عافیت عطا فرمائیے. اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے. یا اللہ کرم کا، رحم کا معاملہ کیجیے. اے اللہ حلال روزی برکت والے اپنے کرم سے نصیب فرمائیے. اے اللہ ان اداروں کو قبول فرمائیے، ان کی کوششوں کو قبول فرمائیے، اس میں تعاون کرنے والوں کو قبول فرمائیے، ساتھ دینے والوں کو قبول فرمائیے. محبت کرنے والوں کو قبول فرمائی، انتظامات کرنے والوں کو قبول فرمائی، اللہ سب کو قبول فرمائی ہے. یا اللہ جو پیٹ کام کرتے ہیں ان کو بھی، جو والنٹیری کرتے ہیں ان کو بھی قبول فرمائی، اس کے منتظمین کو قبول فرمائی، ان کو جزائے خیر میں رحمت فرمائی. اللہ ہر ہر قدم پر غیبی تحریر کو شامل حال فرمائی، حفاظت فرمائی، اللہ ہر جہت سے حفاظت فرمائی، ہر قدم قدم پر مدد فرمائی، غیبی تحریر کو شامل حال فرمائی، ہر قسم کے شروع و فتن سے محفوظ فرمائیے، اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. وصلی وسلم وبارک علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، برحمتہ.